नमस्ते मित्रों, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमने पिछले कुछ दो एपिसोड से ये देख रहे थे कि कैसे कर्मों की गुह्य गति होती है, और उसके बारे में डॉक्टर सचिन ने हमको बहुत अच्छी अच्छी टिप्स बताई थी। एनर्जी के बारे में बताया था, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। आज हम एक नए विषय के साथ कुछ और उसके सीक्रेट जानेंगे। हर बार की तरह डॉक्टर सचिन मेरे साथ स्टूडियो में है, मैं उनका स्वागत करती हूँ। ओम शांति, नमस्ते।
ओम शांति।
आज मेरा जो खास क्वेश्चन ये रहेगा, सबसे पहले कि बहुत लोग हम देखते हैं आसपास, हमारे आसपास की बहुत मूडी होते हैं, मतलब बहुत जल्दी उनका मूड चेंज हो जाता है। तो अंदर सवाल ये है कि मूड क्या जन्म के साथ ही उनका मूडी स्वभाव होता है या फिर बनता है वो मूड? सबका चेंज होता है, लेकिन कईयों के मूड ऐसे हैं कि बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं और बहुत लंबे समय तक रहते हैं और बहुत फास्ट उसके अंदर वो लोग डिसीजन लेते हैं।
बहुत इम्पॉर्टेंट ये बात है। इस समय जितने भी मानसिक बीमारियां हम देख रहे हैं, उसमें ये मूड डिसऑर्डर करके जो बीमारी है, इसको हम नंबर वन पोजीशन पे इस समय रख रहे हैं, और इसके ऊपर डॉक्टर्स का काफी विशेष अटेंशन है। जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से कहा कि मूड डिस्टर्ब होता है थोड़े समय के लिए, लेकिन उस थोड़े समय में जो मूड डिस्टर्ब हुआ, उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं, वो अगर परमानेंट है तो पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है उसमें।
जी।
मेरे सामने जो केसेस आते हैं कि जो जेल में हम जाते हैं लेक्चर लेने के लिए या काउंसलिंग के लिए, तो हमने देखा कि जितने भी लोगों ने मर्डर किया है या बहुत बड़ा ऐसा काम किया है, वो टेम्पररी मूड डिस्टर्बेंस की स्टेज में किया है।
जी।
तो उनको जब पूछा गया कि आप पढ़े लिखे हैं इतने, तो आप या आप अच्छे घर से हैं, तो आपने ऐसा काम क्यों किया, वो थे तो उन्होंने सबने एक ही जवाब दिया कि सर, हम बुरे लोग नहीं है, सिर्फ उस थोड़े क्षण के लिए मेरा
मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा
मैं क्या कर रहा हूँ। खास करके इसमें हम देखते हैं कि एंगर या क्रोध जो है उसमें, या बदला लेने की भावना जो होती है कि मैं नहीं छोड़ने वाला, ये जो विकार है, इसमें जो डिसीजन लिया जाता है उसमें बहुत नुकसान होता है। तो मूड डिसऑर्डर इज अ बिग चैलेंज। और फिर क्या होता है, वो क्रोध में वो कर्म कर देते, बाद में पश्चाताप होता है। मतलब दिस इज वेरी वेरी टिपिकल। मतलब वो मूड आ गया आपका, जिसमें आपका कंट्रोल चला गया, और उस मूड में आपने कुछ कर्म किया, या तो किसी को अपमानजनक शब्द बोल दिए। अभी ऐसे केसेस हमने देखे कि 10 साल 20 साल पहले कुछ कहा था किसी ने, वो मूड डिस्टर्बेंस अवस्था में, उसकी वजह से आज तक रिलेशनशिप खराब है। एक तो वो बोलने वाला, उसको पश्चाताप, और जिसने सुना उसके अंदर वो इतना हर्ट क्रिएट किया है कि आज तक उनके रिलेशनशिप ठीक नहीं है।
यानी जब मूड डिस्टर्ब होता है तो क्या हम इतना डीप में वो चला जाता है कि हम माफ नहीं कर सकते सामने वाले को, इसीलिए हम पकड़ कर रखते हैं?
अभी इसके ऊपर बहुत संशोधन हो रहा है कि ये मूड जब आता है, माना यहाँ पे जब हम आते हैं तो हम उसको निगेटिव के रूप में ही बोल रहे हैं, नकारात्मक भावना, जो फिर वो निराशा की हो, फ्रस्ट्रेशन की हो, या क्रोध की हो,
बदला,
या बदला लेने की भावना हो, या ईर्षा भाव हो, ये जो शेड्स है ऑफ निगेटिविटी, उस समय व्यक्ति क्या करेगा ये भरोसा नहीं है। मतलब वो कुछ भी कर सकता है, डिपेंड्स ऑन दैट पर्सनैलिटी। मुझे अभी कितने केस याद आ रहे हैं इसके ऊपर, मुझे एक केस याद आता है जो मैं आपको सुनाता हूँ। उसमें लव मैरिज हुआ था, प्यार करके शादी हुई थी, लेकिन वही वो मूड डिसऑर्डर के वजह से शॉपिंग करने गए। शॉपिंग में वो बहन ने साड़ी लेने के लिए बहुत सारी साड़ियां देखी, जो स्वभाव है बहनों का, तो उस अनुसार उसने देखा, पर इसका मूड उसके वजह से डिस्टर्ब हो गया कि अगर तुझे लेना नहीं है तो सब साड़ियों को ओपन क्यों कर रहे, खराब हो जाती है, छोटी सी बात। पर उसके बाद प्यार होने की वजह से कुछ नहीं बोला, घर पे आए और उसको इतना मूड डिस्टर्ब हो गया कि उसने आके भी समझा, उसके ऊपर उनका कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ। पर इसने क्या किया कि अपने आप को लटका लिया फैन से कि तेरे को पता चलेगा मेरे को कितना तकलीफ होती है, छोटी सी बात है,
बहुत छोटी,
पर उसमें अपने जीवन को खत्म कर दिया। ये मूड डिसऑर्डर में हुआ है, और इसको हम अर्ली स्टेज में पिकअप कर सकते। तो जब वो बहन हमारे पास आए तो हमने उनसे पूछा, कि इनका कैसा स्वभाव था, जब इनके इच्छा के विरुद्ध कोई चीज होती तो ये क्या करते थे। तो उन्होंने बहुत टिपिकल कहा कि वो मेरे से प्यार होने के कारण मुझे कुछ वैसा नहीं बोलते थे, पर अपने आप को तकलीफ कर देते थे। तो सिर को पटकना दीवारों के ऊपर है ना, अपने आप को तकलीफ करना, ये जो सेल्फ पनिशमेंट वाले लोग होते हैं ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं खुद के लिए, और वो दूसरों को बोलने के बजाय अपने को सजा देके खत्म कर सकते हैं। ऐसे लोग भी होते जो हाथ के ऊपर ब्लेड मार लेते हैं ऐसे
जी।
मूड डिस्टरबेंस के स्टेज में लिए गए सब स्टेप्स है ये
जी।
या किसी को अपने लाइफ पार्टनर को जिसके साथ आपको जिंदगी बतानी है उसको तलाक 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 पूरा मतलब डिसीजन पूरा छोड़ने का डिसीजन ले लेते हैं, या जिस घर में रहते हैं उस घर में छोड़ने का डिसीजन ले लेते हैं। मूड में लिया गया ये डिसीजन है जब डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड में। अभी फेसबुक इस समय की जनरेशन को उनका आदत है फेसबुक पे जाने की, लेकिन घर वालों ने फेसबुक पे जाने से रोका कि अच्छा नहीं है आप इतना नहीं जाओ, तो रोका इसलिए आत्महत्या करना। अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सिर्फ फेसबुक पे रोकने से, या अभी नवरात्रि उत्सव चल रहा है डांडिया खेलने जाने से मना किया इसलिए सुसाइड करना, ये टेम्पररी मतलब आप क्या कर रहे हैं, छोटी सी बात के लिए अपने जीवन को तबाह कर रहे हैं, अपना और दूसरों का कितना उसे नुकसान कितना हो रहा है।
आप जो ये सारी केसेस बता रहे हैं तो ये ऐसा ऐसा है कि ये लाइक जन्म के साथ ही इनके ये ट्रेट आए हैं?
हम सब बचपन से ही कुछ बीज लेके आते हैं जो हमारे माँ बाप से हमको मिलते हैं, तो जीन्स तो होते ही है। अगर समझो किसी परिवार में मानसिक बीमारी का बीज है ना, किसी में डिप्रेशन होता है, किसी में नशाखोरी होती है जैसे एडिक्शन होता है फैमिलीज में, किसी में गुस्से का भी बीज होता है, मैंने देखा है ऐसे फैमिलीज में रन होता है। तो जो भी बीज हमको मिलता है, लेकिन कैसे है कि बीज हमको मिला हुआ है जीन्स में, माँ बाप से आया हुआ है, पर कोई भी बीज अगर इस टेबल के ऊपर मैं बीज रखूं तो उसका पौधा नहीं होगा, उसका पेड़ नहीं होगा। उस बीज को एक धरनी चाहिए, सूर्य प्रकाश, पानी, खत, ये सब चाहिए, तब उसका वृक्ष होता है
जी।
तो बीज मिलता है, पर बीज के साथ में अगर वो वायुमंडल नहीं मिला तो भी वो
बीज फलीभूत
नहीं होता और वो पर्सनैलिटी नहीं दिखाई देती है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर भले हमारे घर में ऐसे बीज है हमारे अंदर, अगर हम बचपन से उनको अच्छा सेल्फ एस्टीम दे, उनको बैलेंस में रहना सिखाए, अगर माँ बाप या फिर टीचर्स या आजकल स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, ऐसे बूढ़ी बच्चे जो होते हैं, मैं बहुत बच्चों से भी मिलता हूं तो उनको पूछता हूं, कहते क्या करे डॉक्टर साहब, पढ़ाई करने का मूड ही नहीं आता है, मूड ही नहीं है। और फिर मूड बनाने के लिए फिर होटल में जाते हैं, पिक्चर देखते हैं या रेडियो टीवी देखते हैं, शॉपिंग जो भी है, तो मूड नहीं बनता है। अर्ली अगर हम पिक करें, देखो थोड़ा मूड नीचे ऊपर होना इट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर आपका लगातार लंबे समय तक आपका मूड ऊपर नीचे हो रहा है, या आप किसी एक निगेटिव स्टेट ऑफ मूड में लंबे समय तक रह रहे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़का या लड़की स्कूल में, मैं बच्चों का कह रहा हूं कि अगर 15 दिन से ज्यादा डिप्रेस मूड में है, लो मूड में है, तो वो बीमारी के शिकार हो सकते हैं। इवन एडल्ट व्यक्ति भी जो पहले बात करने वाला था, उसका अगर स्वभाव में ऐसा परिवर्तन 15 दिन से ज्यादा हम देखते हैं तो उसका इवैल्यूएशन होना जरूरी है, क्योंकि इसका आधार डायरेक्ट हमारे मस्तिष्क से है। अगर हम बचपन में उनको ट्रेनिंग दें अच्छी तरह से, तो अर्ली पिकअप करके हम इनको अच्छी ट्रेनिंग से हम इनको बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में रहना सिखाते हैं। नंबर टू, जब भी मूड डिस्टर्ब हो तो इमीडिएटली बड़े डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हम इसको हॉल्ट मेथड कहते हैं। हॉल्ट मेथड, हॉल्ट में चार शब्द है, HALT। तो जब भी आप हंग्री, एंग्री और लोनली और डिप्रेस्ड है, टायर्ड है, तब आप बड़े डिसीजन मत लेना। हंग्री, एंग्री, लोनली एंड टायर्ड,
लोनली और टायर्ड,
हमने ये भी देखा है। अभी हम अपने हॉस्पिटल का एग्जांपल देते हैं, हमारे यहाँ के बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, जो बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट है, हम उसके साथ काम कर रहे थे, ECG टेक्नीशियन बैठा है, सभी बैठा है, ओपीडी का टाइम है, मॉर्निंग है, फ्रेश है, हम आए हुए हैं, और वो इसी जो टेक्नीशियन ने कुछ बोला कि मेरे को छुट्टी चाहिए करके, कुछ काम है जिसके लिए जाना है, और ये कार्डियोलॉजिस्ट का इतना गुस्सा बढ़ गया है, जिसको हमने कभी जोर से बात करते हुए नहीं देखा, पर उनका आवाज पूरे ओपीडी में घूम रहा है। तो हमको धक्का लगा कि ये मेडिटेशन करने वाली आत्मा, लेक्चर लेने वाली आत्मा, पर अभी क्या हो गया? सो वी रियलाइज बीइंग अ डॉक्टर कि कुछ तो गड़बड़ है, और उस आत्मा को भी रियलाइज हुआ डॉक्टर साहब को कि ये क्या हो रहा है। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि सचिन जरा मेरा शुगर चेक करना, एंड देन वी चेक द शुगर, इट वॉज 30 हो गया था। नॉर्मल 90-100 होता है
जी।
उनका 30 पे उन्होंने कुछ खाया ही नहीं था।
तो
हंगरी भी आप है ना, तो हंगर माना शुगर अगर आपका कम है तो आपका मूड के ऊपर उसका इफेक्ट आ सकता है। टायर्ड है आप, थके हुए हैं, अभी हमने आईसीयू में ड्यूटी किया हुआ है, तो जब भी हमने देखा अगर लंबे समय तक हमारा नींद पूरा नहीं होता ना, गुस्सा बढ़ता है। इवन हमने देखा है जो शिफ्ट ड्यूटी वाले लोग रहते हैं, नाइट ड्यूटी कंटिन्यूस करते हैं, या कई लोगों का नींद कम होता है ना, तो उनका जो ब्रेन है वो इरिटेबल हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो जब भी आप टायर्ड है या हंग्री है, एंग्री है या लोनली है, आप बड़ा डिसीजन मत, जब आप बहुत खुश है ना, किसी को प्रॉमिस मत करो, क्योंकि वो खुशी में दिया हुआ प्रॉमिस शायद आप निभाएंगे नहीं। बैलेंस में रहो, इसको हम कहते हैं कि आप एक्सट्रीम में मत जाओ। इसलिए टू मच खुशी होना ये भी अच्छा नहीं है, और टू मच नीचे जाना ये भी। ये अगर हम भावना की अगर पट्टी बना ले, हमारी जो भावनाएं होती है उसको अगर पट्टी में बना ले, तो एक तरफ हम जिसको कहते हैं मैनिया, माना अति अति आनंद या उन्माद की अवस्था है, और एक अति डिप्रेशन, एक तरफ बहुत नीचे है और एक तरफ बहुत ऊंचे है, ये फ्लक्चुएशन दोनों गलत है। आप बीच में आ जाओ। देखो ऐसा होता है आज के जमाने में कि आप, हो सकता है कि आपका मूड ठीक नहीं हो, ओके टेम्पररी गए ना, वापिस आ जाओ, आप सेंटर में आ जाओ। और टू मच लंबे समय तक खुश रहना, देखो खुशी अच्छी चीज है, मैं यहाँ खुशी के बारे में नहीं कह रहा, पर उन्माद जो अवस्था है ना, ये बीमारी है, जिसमें हम कैसे पहचानते कि तीन तीन चार चार दिन तक सोए नहीं है, और उनकी ऐसी अवस्था है कि वो अपने आप को समझते कि उनके जैसा दूसरा कोई है नहीं। इसको हम आइडियाज ऑफ ग्रैंडियोसिटी कहते हैं।
या तो कई बार बहुत ज्यादा सोते हैं, 2-3 दिन तक लगातार।
हाँ, ये भी ठीक नहीं है। मतलब किसी भी चीज में आपका बैलेंस जा रहा है ना, रूटीन तो समझना चाहिए कुछ तो गड़बड़ है। अब ये कभी कभार होता है ना तो ठीक है, पर अगर ये लंबे समय तक होता है तो आपको अच्छे व्यक्ति का ओपिनियन लेना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। कई लोग इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, ये भी एक हमारे सामने चल। बहुत सारे मेंटल बीमारी में ये होता है कि वो अपने को तकलीफ है, एक्सेप्ट ही नहीं करते।
हाँ जी, पेशेंट भी नहीं है लेकिन फिर भी हमको मेंटल बीमारी है या थोड़ा सा हम डिस्टर्बेंस की स्टेज से जा रहे हैं, ये एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल है। तो इतना जब लंबे समय तक होता है तो वो बेसिकली अंदर एक मेरे पास ऐसे बहुत नजदीक के व्यक्ति है जिनको अंदर से पकड़ के रखा हुआ है कि मुझे उन्होंने बोला इसलिए मैं उनको माफ नहीं करूंगा एट एनी हाउ। तो इतना मूड चेंज हो जाता है, जैसे ही सामने आता है पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है। ऐसे हमें, हम राजयोग का सहारा हम कैसे ले और उसको कैसे खत्म कर सकते हैं?
ये बहुत केसेस हमारे पास आजकल ऐसे आते हैं, अगर इनका अच्छी तरह से हिस्ट्री हम लेते हैं तो हमको उसके अंदर एक मानसिक बीमारी पाई जाती है। ये बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की बीमारी हो सकती है, जिसमें मूड फ्लक्चुएशन, कभी खुशी कभी गम वाली अवस्था होती है, या कई बार डिप्रेशन वाली स्टेज हो सकती है जो दिखाई देती है गुस्से के रूप में। तो इन लोगों का इलाज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपने कहा ना कि बात करना बंद करना, खाना खाना बंद करना, और देखते ही वो पूरा फाइल खुल जाता है।
बट दे लुक वेरी नॉर्मल,
दे लुक नॉर्मल बट दे आर नॉट, है ना। एक्चुअली ऐसे व्यक्ति को काउंसिलिंग की जरूरत है और उसको इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत है, बाहर से पता नहीं चलता है। अभी क्या होता है, ये ऐसे ही जिंदगी भी बिता लेते हैं लंबे समय तक
जी।
लेकिन आप मेरे को कहो घर में पति पत्नी इस अवस्था में है, या बाप और बेटा, या एक परिवार में पड़ोसी है, ये जिंदगी भर आप परेशान है वहां पे। क्योंकि क्या होता है कि मैं ये मान के चलता हूं कि इस व्यक्ति के वजह से मेरे को परेशानी है, और उसका फाइल मेरे अंदर बना हुआ है कि इस व्यक्ति ने मेरे को 20 साल पहले गाली दी थी, मेरा अपमान किया था, मेरी कोई गलती नहीं थी, वो फाइल अंदर पड़ी हुई है। जैसे वो व्यक्ति आता है सामने, वो फाइल का बटन दब जाता है, पूरी फाइल खुल जाती है, तो जो अंदर पड़ा हुआ गुस्सा है पूरा बाहर निकल जाता है, और ये बहुत लंबे समय तक चलता है। जितना हो सके इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए।
तो इसको बीमारी नहीं समझा जाता बेसिकली, कई लोग समझते हैं गुस्सा है। और ये सब चीजें बहुत नॉर्मल हम लोग सभी तरफ देखते हैं, हर एक के फैमिली में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होता है, ये बीमारी का रूप इसको अभी तक नहीं माना गया।
बीमारी को अंग्रेजी शब्द बहुत अच्छा है, अंग्रेजी में हम डिसीज कहते हैं, डिस ईज, मतलब जब आप अपना ईज खो देते हैं यू आर नॉट नॉर्मल। देखो नॉर्मल व्यक्ति कैसा रहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो खुश रहेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी भूख अच्छी रहेगी, नींद अच्छी रहेगी, उसका मूड भी स्टेबल रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये कह रहा हूँ कि कभी कभार ऊपर नीचे होना इट इज एक्सेप्टेबल विद इन अ रेंज है वो, लेकिन अगर लंबे समय तक जो आपने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो दैट इज नॉट नॉर्मल, यू नीड हेल्प। और होता क्या है कि शुरुआत में शरीर और मन के चेंजेस दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे वो लंबे समय तक होने लगता है तो वो ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनका असंतुलन बढ़ने लगता है। और अगर स्टेज पे नहीं रोका गया, हम इसलिए कहते हैं कि इस स्टेज पे काउंसलिंग से हम रोक सकते हैं, उसको इमोशनल सपोर्ट से रोक सकते हैं। क्या कई लोग उसी लेवल पे भी रहते हैं लंबे समय तक, मैंने जिंदगी भर उसी मूड में रहेंगे, लेकिन उसको हम ठीक कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स को हील कर सकते हैं। सिर्फ वो एक एटीट्यूड चाहिए, ओपननेस चाहिए एंड ओपननेस टू डिस्कस। चलो ब्लेम गेम छोड़ दो, किसका दोष है ये ढूंढना बहुत मुश्किल होता है सर, पर ओपननेस टू डिस्कस द थिंग्स, मतलब कौन राइट है इससे ज्यादा जरूरी क्या राइट है, उसके ऊपर तो हम एग्री कर सकते हैं।
जी जी,
ये रिलेशनशिप्स के इश्यू बहुत सूक्ष्म होते हैं और इसमें माफ करना नहीं चाहते हैं लोग। मैंने देखा, मतलब यहाँ तक तो लोग पहुंचे हैं कि वो कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन माफ नहीं करूंगा।
जी, ये तो बहुत स्टबननेस अंदर होता है।
हाँ।
कि कुछ भी हो जाए, हम इतने हर्ट हुए हैं।
हाँ।
और जिन्होंने हमको हर्ट किया है हम उसको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि फिर से एक बिलीफ है कि अगर मैं उनको माफ करूंगा तो फिर से वो मुझे हर्ट करेंगे। मुझे फिर से मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि राजयोग में हम क्या ऐसी एक विधि अपनाएं कि जिसकी वजह सामने वाले को माफ करना हमारे लिए आसान हो।
बहुत अच्छा सवाल है और मेरे ख्याल से बहुत सारी बीमारियों में हमको इससे राहत मिल सकती है। अभी हमारा विश्वास ऐसे बढ़ता जा रहा है कि सभी बीमारियों की जड़ मन में है, पहले हम नहीं मानते थे, अभी 90% से ज्यादा हम कहते कि शुरुआत माइंड में होती है। जो मैंने मूड डिस्टर्बेंस का कहा ना, वो डिस्टर्बेंस शुरुआत में थोड़ा होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है और उसका इफेक्ट हमारे शरीर के अंदर टारगेट ऑर्गन के ऊपर आता है। और इन सब के जड़ में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स के इश्यू है। उसमें हमने देखा एक ही इमोशन है जो सभी बीमारियों को पैदा करता है और जिसके ऊपर बहुत सारा लिटरेचर है, बहुत सारे आजकल स्टडीज भी है, और वो है कि क्षमा न कर पाना, अनफॉरगिवनेस।
अच्छा,
हाँ,
ये वाला इमोशन सबसे,
ये इमोशन सबसे स्ट्रांग है और वहां पे राजयोग काम करता है। राजयोग क्या कहता है कि इस विशाल मनुष्य सृष्टि नाटक में हर व्यक्ति अपना अनादि रोल प्ले कर रहा है, माना किसी को कैसे बिहेव करना ये आपके कंट्रोल में नहीं है, वो अपना रोल प्ले करेगा और वो किस आधार पर करेगा, उसके स्वभाव संस्कार के आधार पर वो प्ले करेगा। दूसरी बात, राजयोग हमको ये भी बताता है कि इस संसार में पर से किसी को आप सजा देने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर आत्मा, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार उसको सजा मिलनी है ऑटोमेटिकली। आप उसमें खुद जाकर सजा देने की कोशिश नहीं करो। मैं इसको इस तरह से खोलता हूं और ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, मुझे ऐसे लगता है कि जो भी कर्म व्यक्ति करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गुस्सा करता है तो उसको सजा देने की जरूरत नहीं है। गुस्से में उसने जो भी किया है वही उसके लिए सजा है। आप और उसको कॉम्प्लिकेट मत करो, क्योंकि वो व्यक्ति सजा भुगत रहा है। क्यों? क्योंकि गुस्सा करने का नेचर उसको बार बार वही कर्म करने पर प्रवृत्त करेगा। बार बार वही, जितने बार कर्म करेगा उसके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स हर बार निकल रहे हैं, एड्रेनालिन निकल रहा है, कॉर्टिसोल निकल रहा है। तीसरा, जितने बार गुस्सा कर रहा है लोग उसके समय रहे इससे बाबा दूर रहो, ये बहुत खतरनाक है, ये कभी भी कुछ कर सकता है, उसके रिलेशनशिप भी खराब है, उसके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स है और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उसकी खुशी नहीं रह सकती। एंगर को डेंजर बोलते हैं, एंगर में सिर्फ डी लगाओ तो डेंजर हो जाता है, वो व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता जो क्रोधी वाला है।
अंदर मन भी खाता रहता है उनका,
और बाद में उनको अगर अच्छा उनके अंदर संस्कार है तो उनको पश्चाताप भी होगा कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको भी ये समझ में आता है। तो ये सब सजा है उसके लिए। अगर आपकी भावना अच्छी है तो आप उसको शुभ भावना दो कि परमात्मा जिसको हम कहते हैं बाबा, कि बाबा इस आत्मा को शक्ति देना, ये आत्मा शांत स्वरूप हो जाए, है ना, इसको शांति मिले। तो राजयोग केवल मेडिटेशन नहीं है, राजयोग माना ज्ञान भी है, जिसमें हमको बताया जाता है कि हर एक आत्मा अपने स्वभाव संस्कार के वश है। किसी में खराबी या गलती दिखाई दे रही तो मेरा काम है, अगर आग लगी है तो पानी डालना उसमें और आग नहीं लगाओ। लोग पहले से ही बहुत दुखी है और राजयोग हमको ये समझ देता है, ज्ञान देता है और शक्ति भी देता है कि वो आत्मा अभी शक्तिहीन है, आप उसको शक्ति दो। और आप किसी को बदल नहीं सकते, ये बॉटम लाइन हम हमेशा भूल जाते हैं। आप नहीं बदल सकते किसी को, आप किसी को प्रेरणा दे सकते हैं, उसको शक्ति दे सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, पर बदल नहीं सकते हैं
जी।
तो उसके प्रति आपको शुभ भावना रखनी है, और आपकी शुभ भावना अगर स्ट्रांग है, मैंने देखा, तो व्यक्ति में शक्ति आती है और वो खुद रियलाइज जब खुद करेगा तभी उसके अंदर परिवर्तन आएगा।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज आपने ये सभी बातों को इतना गहराई से बताया कि कैसे मूड डिसऑर्डर होते हैं, मूड चेंज होने के बाद कई बार लंबे समय तक चलता है, तो उसकी वजह से हमें उनको हेल्प कैसे करनी है, उनको प्यार की जरूरत है, सहानुभूति की जरूरत है, तो ये सब चीजों पे आपने बहुत अच्छे से बताया। राजयोग का भी आपने हमको एक सीक्रेट बताया कि हर इंसान का अपना रोल है। तो आज हम फिर से थोड़ा अगर आप हमारा गाइडेड मेडिटेशन कराएंगे तो हमको बहुत हेल्प होंगी।
ठीक है, सभी अलर्ट होके बैठेंगे, सिर से लेके पांव के अंगूठे तक अपना संपूर्ण शरीर हल्का छोड़ेंगे, दोनों हाथ और पैर, छाती, पेट, पीठ के मांसपेशियां, गर्दन और चेहरा बिल्कुल हल्का होते जा रहा है, शांत और रिलैक्स। अपने ध्यान को दो आंखों के बीच में लेके जाएंगे और देखेंगे एक सुंदर दिव्य प्रकाश दो आंखों के बीच चमक रहा है, और मैं ये दिव्य प्रकाश हूं, इस शरीर का मालिक हूं। परमात्मा शांति का सागर, उसका शांति का प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है, मैं शांत होते जा रहा हूं और मुझे स्पष्टता आते जा रही है। मैं अपने जीवन को साक्षी होके देख रहा हूं, बचपन से लेके अब तक 24 घंटे में मेरा मूड कैसे रहता है, क्या मैं कभी बहुत खुश होता हूं, क्या मेरी खुशी कम हो जाती है, मैं उदास हो जाता हूं, मुझे कब कब गुस्सा आता है, और मेरे ये सभी मूड्स कितने समय तक रहते हैं, क्या ये मूड के ऊपर मेरा नियंत्रण है, क्या मैं अपने आप को स्टेबल स्थिर रख सकता हूं। मैं अपने आप को साक्षी होकर देख रहा हूं और मैं महसूस कर रहा हूं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति हो, लोग मेरी इच्छा के अनुसार बिहेव नहीं कर रहे हो, फिर भी इन सभी परिस्थितियों में मैं अपने आप को स्थिर रख सकता हूं, मेरी भावनाएं मेरे नियंत्रण में हैं, गुस्सा करने के बजाय मैं अपनी बात को अच्छी तरह से रख सकता हूं, मैं अपने मन और बुद्धि को किसी विशेष कार्य में, रुचिपूर्ण कार्य में लगा सकता हूं, मेरा मूड परिस्थिति और व्यक्ति डिसाइड नहीं करते, परंतु मेरा मूड मैं स्वयं निर्माण करता हूं, मैं मास्टर रचयिता हूं, मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने में सक्षम हूं। मुझे अब समझ में आ रहा है कि संतुलित अवस्था में मन को रखना कितना आवश्यक है, और परमात्मा की मदद से, परमात्मा के प्रकाश से, ज्ञान से मैं अपने आप को संतुलित रख पा रहा हूं, मेरे लिए ये संभव है। मैं बिल्कुल शांत हूं, प्रसन्न हूं, मेरा मूड स्थिर होते जा रहा है, और अपने मूड को मैं दिन भर स्थिर रख सकता हूं, इसका मुझे विश्वास है। मैं बिल्कुल शांत हूं, प्रसन्न हूं, खुश हूं, मुझे अच्छा लग रहा है। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स अगेन कि आपने पूरे एपिसोड में जो स्पेशली ये चीज बताई कि कैसे हमारे मूड के असर फिजिकली बॉडी पर होते हैं और कैसे स्ट्रेस हार्मोन्स जनरेट होते हैं, उसके बारे में बहुत ही, मुझे लगता है ये हमारे दोस्तों के लिए भी बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आज जो आपने हमको दी, उसके लिए फिर से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। ओम शांति, नमस्ते।
शांति।
दोस्तों, आज के पूरे इस एपिसोड में हमने बहुत गहराई से इस बात को जाना कि कैसे हमारे मूड चेंज होते हैं और बार बार मूड चेंज होने की वजह से हमारे फिजिकल बॉडी पर कैसे उसका असर हो सकता है। जैसे डॉक्टर साहब ने आज हमको बताया कि अगर हंगरी है, एंग्री है या टायर्ड है या लोनलीनेस है, तो इसमें हमको परमानेंट डिसीजन नहीं लेने चाहिए। तो आप इसके बारे में जरूर विचार कीजिए। हम एक नए सीक्रेट के साथ फिर से आपको मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।